स्कंध 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 46। स्वं एव ब्राह्मणः भुङ्क्ते, स्वं वत्ते, स्वं ददाति च तस्य एव अनुग्रहेण अन्नं भुञ्जते क्षत्रिय आदयः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं तथा अपना ही धन दान में देते हैं। तात्पर्य भगवान की पूजा नमो ब्राह्मण्य देवाय शब्दों से की जाती है, जिससे सूचित होता है कि परमेश्वर ब्राह्मणों को पूज्य देव मानते हैं। परमेश्वर सबों द्वारा पूज्य हैं, किंतु अन्यों को शिक्षा देने के लिए वे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान को सारे संसार में प्रसारित करना है। जब भी वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु ब्राह्मणों का अभाव होता है तो मानव समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। चूंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव भगवान के प्रत्यक्ष सेवक दास होते हैं, अतः वे अन्य पर आश्रित नहीं रहते। वास्तव में संसार की सारी वस्तुएं ब्राह्मणों की हैं, किंतु वे विनयवश क्षत्रियों या राजाओं तथा वैश्यों या व्यापारियों से दान ग्रहण करते हैं। प्रत्येक वस्तु ब्राह्मणों की है, किंतु क्षत्रिय सरकार तथा व्यापारी वर्ग को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को बैंकरों की भांति अपनी अमानत में रखे और जब भी ब्राह्मणों को धन की आवश्यकता पड़े तो क्षत्रिय तथा वैश्य तुरंत उसकी पूर्ति करें। यह बचत खाता की भांति है, जिसका जमाकर्ता इच्छानुसार अपना धन निकाल सकता है। भगवान की सेवा में रत रहने के कारण ब्राह्मणों के पास इतना समय नहीं कि संसार भर की अर्थव्यवस्था को संभालें, अतः सारी पूंजी क्षत्रियों या राजाओं द्वारा रखी जाती है, जो ब्राह्मणों के मांगने पर उस पूंजी को प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में ब्राह्मण या वैष्णव पराये खर्चे पर जीवन यापन नहीं करते, वे अपना खर्च करते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वे धन को अन्यों से एकत्र कर रहे हैं। क्षत्रियों तथा वैश्यों को दान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी रहता है वह ब्राह्मणों का होता है। अतः केवल ब्राह्मणों के आदेश पर ही क्षत्रिय तथा वैश्य दान दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश इस समय ब्राह्मणों का अभाव है, और चूंकि तथाकथित क्षत्रिय तथा वैश्य ब्राह्मणों के आदेशों का पालन नहीं करते, फलस्वरूप संसार में अराजकता फैली हुई है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में से ज्ञात होता है कि क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ब्राह्मणों की कृपा से ही भोजन पाते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें ब्राह्मणों द्वारा वर्जित कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। ब्राह्मण तथा वैष्णव जानते हैं कि क्या खाना चाहिए, और वे कोई ऐसी वस्तु नहीं खाते जो पहले भगवान को न चढ़ाई जा चुकी हो। वे केवल प्रसाद अर्थात भगवान को अर्पित भोजन का जूठन खाते हैं। क्षत्रियों वैश्य तथा शूद्रों को केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, जो उन्हें ब्राह्मणों की कृपा से प्रदान किया जाता है। वे कसाई घर खोलकर मांस मछली या अंडा नहीं खा सकते, न शराब पी सकते हैं, और न बिना अनुमति के इस कार्य के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान युग में समाज का संचालन ब्राह्मणों के आदेशों से नहीं होता, अतः सारी जनता पाप कर्मों में मग्न है। फलस्वरूप सबों को प्रकृति दंड कर रही है। कलयुग की दशा ऐसी ही है। क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कोई भी वस्तु का स्वामी कौन है। जैसे हम जमीन देखें, जमीन किसकी है, समुद्र में पानी किसका है, वर्तमान समय में क्या परिभाषा है, किस तरीके से निश्चित होता है कि जमीन किसकी है, समुद्र किसका है, कोई भी संपत्ति है, क्योंकि मनुष्य खुद तो कोई भी चीज पैदा कर नहीं सकता, सब कुछ उसको प्रकृति से आता है। तो प्रकृति के जो भी संसाधन, जो भी वस्तुएं हैं, संपदा हैं, वो किसकी मिलकत मानी जाए। उसके अंतर्गत एक कम्युनिस्ट विचारधारा है, एक कैपिटलिस्टिक विचारधारा है। कम्युनिस्टिक विचारधारा के अंतर्गत जो राज्य है, जो सरकार है, हर चीज उसकी संपत्ति है, किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी नहीं, सब संपत्ति केवल सरकार की है। और जो कैपिटलिस्ट है कंट्री विचार, उसके अंतर्गत व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता है कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज रख सकते हैं। तो इस विचारधारा की वजह से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे जो वर्तमान अमेरिका है, तो पहले वहां पर अमेरिकन जो आज अमेरिकन हैं, तो वो लोग पहले कहाँ थे, कहाँ से आए थे वो लोग, वो यूरोप से वहां गए थे, वहां उससे पहले रेड इंडियंस थे, और वहां पर उन्होंने कब्जा किया, और अभी उस पर उन्होंने अपनी जो सीमाएं हैं उसको सेना से रक्षित कर दिया, और कोई व्यक्ति बिना पासपोर्ट के जब तक उनकी परमिशन नहीं हो सरकार की, तब तक कोई एंटर नहीं कर सकता। इस प्रकार से अभी पूरा जो भूमि है वो अलग अलग राज्यों में, देशों में बटा हुआ है, और अभी समुद्र भी ऐसे बटा हुआ है, जो देश है उसके यहाँ तक हमारी सीमा है, इसके अंदर कोई और एंटर नहीं हो सकता है। यदि बिना हमारी परमिशन के कोई आएगा, उसको घुसपैठिया माना जाएगा, उसको हम लोग अटैक कर सकते हैं उसके ऊपर। तो इस विचार के अंतर्गत सिद्धांत साधारण रूप से देखा जाए तो क्या है, जिसके पास हड़पने की शक्ति है उसकी संपत्ति, सिंपल वर्ड्स में भी बोला जाए। हमारे पास शक्ति है तो हम अपना राज्य का विस्तार करेंगे, जितनी जमीन हम, जितना लोगों को हम लोग अपने कब्जे में कर सकते हैं वो जमीन हमारी हो जाएगी, और उसके अंतर्गत जितनी भी संपदा है, प्राकृतिक संपदा, वो भी हमारी हो जाएगी, उसको हम लोग अपने अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वर्तमान समय में प्रोप्राइटरशिप की। तो इसलिए हमेशा स्वाभाविक है कि झगड़े होंगे, इसलिए यूनाइटेड नेशंस कभी भी यूनाइटेड नहीं हो सकती, क्योंकि जब सिद्धांत ये हो गया जिसके पास जो जितनी शक्ति है उसके आधार पर निर्भर है आप कितना ले सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का पर्पज क्या था, सब देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वार हो रही थी। क्या कारण था एक वर्ल्ड वार में कि जो जर्मन थे और इंग्लिश जो अंग्रेज लोग थे उनमें बहुत संघर्ष रहता था मार्केट को लेकर के। तो जो अंग्रेज थे वहां पर कुछ उत्पन्न नहीं होता है इंग्लैंड में, प्रकृति की दृष्टि से वो नरक जैसा है। तो वो लोग बाहर से रॉ मटेरियल ला करके दूसरे, इसलिए हमेशा इंग्लिश लोग जो हैं वो कॉलोनाइजेशन करते थे क्योंकि वहां कुछ है नहीं दूसरे। तो भारत का जो मार्केट था वो पूरा उन्होंने कब्जे में कर लिया था और जर्मन्स को बिल्कुल अलाउ नहीं था वहां पर आना। तो इस वजह से हिटलर वो बदला लेने के लिए और वो मार्केट को छीनने के लिए स्टार्टिंग लड़ाई हुआ। तो इस प्रकार से वर्ल्ड वार को रोकने के लिए और ये आगे लड़ाई ना हो इससे यूनाइटेड नेशंस बनाया गया कि देखो भाई ये जमीन तो इतनी सीमित है, भूमंडल इसमें इतनी संपदाएं हैं, हम सबको भोग करना है, लेकिन यदि हम लोग कुछ एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही आक्रमण करते रहेंगे तो ना आप भोग कर पाओगे ना हम भोग कर पाएंगे, इसलिए हम लोग कुछ एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं अपने आपस में कि अपनी अपनी सबकी सीमाएं हैं, हम उसमें रेस्ट्रिक्ट रहेंगे, हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। इस प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर विश्व युद्ध ना हो, देश ना लड़े, ऐसा विचार किया गया। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस बनने पर भी लड़ाई तो अभी भी चालू है, आज तक भी चालू है, सब देश लड़ते रहते हैं, यूनाइटेड नहीं हो सकते। तो शिला प्रभुपाद इसका कारण क्या बताते हैं कि क्यों यूनाइटेड नेशंस फेल है, फेलियर है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के गठन के पीछे विचारधारा ऐसी है कि पहले 10 चोर डकैत चोरी करते हैं, डकैती करते हैं और फिर आपस में एक निश्चित करते हैं कि हमें आपस में बहुत ईमानदार रहना चाहिए, जो भी हम लूट के लेके आए हैं उसको हमें बड़ी ईमानदारी से बांटना चाहिए। लेकिन वो चोर हैं तो चोर की जो मेंटेलिटी है जब तक वो नहीं जाएगी तब तक ईमानदारी कैसे आएगी। हम चोरी करेंगे और फिर ईमानदार बनेंगे, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। अगर चोरी करेंगे और फिर कहेंगे अभी हमें ईमानदारी से बांट लेंगे तो वो नहीं होगा। इसलिए उस जब बांटने का, जब भी आप देखिए जब भी ये गैंग जब कोई चोरी करते हैं तो उसका लड़ाई होती है आपस में जनरली और फिर एक दूसरे को मार देते हैं, क्योंकि वही सिद्धांत तो वो लोग सब मिल करके किसी को लूट रहे थे कि वो कमजोर है उसको, और फिर जब आपस में तो फिर अब आपस में बंटवारा करने के लिए वो दूसरे को उसी दृष्टि से देखते हैं, हाँ जिसके पास शक्ति है वो लूट ले वो ले ले। तो इसलिए उनमें आपस में हमेशा लड़ाई होती है, जिसको प्रभुपाद सिंपल शब्दों में प्रकट करते हैं, अगर आप लोगों को कुत्ते जैसी मेंटेलिटी में रखेंगे, डॉगिश मेंटेलिटी में, और फिर शांति की अपेक्षा करेंगे तो ये कैसे संभव हो सकता है। जो कुत्ता होता है उसके अंदर ये भावना बहुत स्पष्ट होती है, एरिया मेरा एरिया है, और कोई भी दूसरा कुत्ता आता है तो वो उसको भौंमो करता है, हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। आप देखिए कहीं भी कुत्ते का कुछ समूह होंगे 3-4 हमेशा लड़ते रहेंगे, तो क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है मेरा है, इसीलिए कुत्ते को रखते हैं घरवाली में, घर की देखभाली में, ये इसकी सीमा है, इसके अंदर कोई आएगा तो भौंके, तो उसकी मेंटेलिटी है ये मेरा है, यहां तक मेरा एरिया है, यहां अंदर कोई आना चाहिए तो मेरा अधिकार है। तो शत्रुपा जी सिंपल शब्दों में यूनाइटेड नेशंस के पीछे मेंटेलिटी को बताते हैं या पूरे जगत में क्या चल रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि वही डॉगिश मेंटेलिटी में ही रहे, ये मेरा है, इसका अधिकार मेरा है, इसको भोगने के लिए ये मेरे भोग की वस्तु है, ये मेंटेलिटी को मेंटेन करते हुए चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, तो वो कभी संभव नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा है उसकी लिमिट कभी बंद नहीं सकती है। लोभ को कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए यदि केंद्र है कि मैं भोगता हूं तो कभी हम जो लिमिट्स है वो हमेशा टकराएंगी वापस, हमेशा हम चाहेंगे हमारी आज हमारी आवश्यकता इतनी है, हमें और बढ़ाना चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, और सब लोग जब ऐसे अधिक अधिक इच्छाएं करेंगे तो सब आपस में टकराएंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक तालाब में आप पत्थर डालिए तो जब हम पत्थर डालेंगे तो क्या होगा, तालाब में लहरें बनेंगी जो कि सेंट्रल से ऐसे निकल करके फैलेंगी, तो अगर अलग अलग जगह पर पत्थर डाले जाएंगे तो क्या होगा, वो सब लहरें आपस में टकराएंगी। तो उसी प्रकार से जब तक ये विचारधारा रखी जाए कि हर इंडिविजुअल केंद्र है इस पूरे जगत का, पूरा जगत ये सभी प्राकृतिक संपदाएं हमारे लिए भोग की वस्तुएं हैं, तब तक हर व्यक्ति का जो सर्किल है, हर व्यक्ति अपने अपने सर्किल को, भोग के सर्किल को बढ़ाना चाहता है, ज्यादा ज्यादा भोग करने के लिए अपने सर्किल को, इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, व्यक्ति ले लो, समाज ले लो या देश ले लो। तो जब सब लोग अपने अपने सर्किल को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि टकराएंगे। इसीलिए जब तक चाहे कम्युनिस्ट विचार हो, कम्युनिस्ट विचार में सरकार एक सत्ता को माना गया है, लेकिन फिर एक देश और फिर दूसरा देश, दोनों कम्युनिस्ट हैं, लेकिन फिर उन दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज में आपस में झगड़ा होगा। तो कार्ल मार्क्स का यह विचार था कि धीरे धीरे पूरा संसार कम्युनिस्ट हो जाए तो फिर आपस में देशों का जो झगड़ा है वो भी खत्म हो जाए। तो ये अच्छा विचार लगता है कि पूरा संसार एक कम्युनिस्ट कंट्री हो जाए पूरी, और पूरी संपत्ति जितनी भी है उपलब्ध वो सब जो राज्य है उसकी मानी जाए और सबको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए, बराबर मात्रा में सबको बांटी जाए, तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये उसका विचार था। लेकिन इस विचार में क्या समस्या है, तो कम्युनिस्ट कंट्री क्यों फेल हुई, रशिया क्यों चला गया, तो सरकार कोई एक इंपर्सनल चीज है, सरकार मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, एक सरकार एक कंसेप्ट है सरकार, तो हर आदमी काम कर रहा है और जो भी कमा रहा है वो सब सरकार को दे रहा है, इस प्रकार से जब व्यक्ति अपनी मेहनत करता है और सरकार को देता है, सरकार जो एक व्यक्ति नहीं है, कोई उसमें रेसिप्रोकेशन नहीं है, तो जो उसका मेहनत करने का जो मोटिवेशन है वो नहीं रहता। एक व्यक्ति परिवार का एक सदस्य होता है तो वो मेहनत करता है किस लिए, कि परिवार के जो उसकी जो पत्नी है और उसके बच्चे हैं उनसे जो उसको लगाव होता है, उस लगाव के कारण वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के पालन पोषण के लिए मेहनत करता है, ये मोटिवेशन है उसके लिए। ये कॉमर्स की मार्शल लॉ कि जो पारिवारिक संबंध है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार है। तो इसलिए कैपिटलिस्ट कंट्रीज हम देखेंगे तो वो बहुत प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सब आप मेहनत करो, जितनी प्रॉपर्टी आप वो आपकी प्रॉपर्टी, देन यू कैन एंजॉय। और वहां पर ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री में सब लोग काम कर रहे हैं किसी एक, जिसको वो देख नहीं सकते, जिससे बात नहीं कर सकते, जिससे कोई आदान प्रदान नहीं है, ऐसी एक इम्पर्सनल सरकार के लिए वो काम कर रहे हैं। तो उसमें कोई व्यक्ति से आदान प्रदान नहीं है, जिस वजह से व्यक्ति कभी इस प्रकार से कार्य करने के प्रति मोटिवेट नहीं हो सकता और संतुष्ट नहीं रह सकता। और दूसरा, जो सरकार है, कम्युनिस्ट नेशन है, जो सरकारी पदों पर है, तो व्यक्ति सब कुछ कमा करके उनके हाथ में सौंप देता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन वो लोग मनुष्य हैं, और जब तक मनुष्य है, मनुष्य के स्तर पर रहे, तीनों गुणों से बना रहे, तब तक उसके अंदर डिफेक्ट, कमियां रहेंगी। वो जैसे बोलते हैं पावर करप्ट, जैसे शक्ति आती है किसी के पास तो करप्ट हो जाता है, पैसा आता है तो करप्ट हो जाता है। तो जो राजा, जो जिसके हाथ में शक्ति हुई, कम्युनिस्ट विचार के अनुसार सबको समान अधिकार दिए जाए, लेकिन एक व्यक्ति तो या कुछ व्यक्ति तो सरकार के ऑफिसर्स बनेंगे और कुछ लोग वर्कर्स रहेंगे, तो समानता फिर भी पॉसिबल तो नहीं है, एग्जैक्टली तो पॉसिबल नहीं है। किसी के हाथ में शक्ति है डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो सब कमा करके एक व्यक्ति के या कुछ व्यक्तियों के हाथ में देते हैं, और फिर कुछ समय देखेंगे निश्चित रूप से कि वो लोग परफेक्ट नहीं है, वो लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो फिर जो व्यक्ति है, जो मेहनत कर रहा है, वो क्यों मेहनत करेगा, वो क्यों मेहनत करेगा कि ऐसे लोगों को मैं दूं जो लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, अपने अपने ऐशो आराम में उड़ाएं, तो मैं क्यों मेहनत करूं, मेहनत ही नहीं करूंगा। और फिर सबको समान मिलना है, चाहे कोई कितना मेहनती है, चाहे कोई कम मेहनती है, सबको इच्छा मिलना है। तो बोलेगा मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूं, मैं अभी उसके उसी काम करूंगा, थर्ड क्लास क्यों मैं काम करूं। तो कम्युनिस्ट नोशन में, विचार के अंतर्गत जो केंद्र है वो राज्य को माना गया है, और राज्य वो इंपर्सनल होने की वजह से व्यक्तियों को उससे संतुष्ट नहीं हो सकती, और जो उनके नुमाइंदे हैं उस सरकार के अंतर्गत, वो इम्परफेक्ट होने की वजह से प्रजा उनकी हृदय से उनके प्रति सरेंडर नहीं होती है, इसलिए बाय फोर्स उनको नियम के द्वारा कि आपको ये देना ही पड़ेगा इतना, तो वो केवल एक टॉर्चर जैसा हो जाता है। रशिया में इसीलिए कम्युनिस्ट कंट्रीज में रिवॉल्यूशन, सब लोग असंतुष्ट हैं। और श्री प्रभुपाद जी जब रशिया में गए, तब उन्होंने देखा कि वास्तव में कोई डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि बहुत दृष्टि से भी देखा जाए, खाने के लिए कुछ अच्छा हो खाने को लिए नहीं है, बहुत थर्ड क्लास, गवर्नमेंट सब राशन की दुकानें हैं सब, तो सब्जी गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, सबको वही सब्जी खानी पड़ेगी, आपकी च्वाइस नहीं है कि आप ये सब्जी खा सकते। और कोई मोटिवेशन ना होने की वजह से कोई उत्पादन अच्छे क्वालिटी, कोई ऐसा उत्पादन नहीं, सब थर्ड क्लास, और इसकी वजह से फिर लोग असंतुष्ट हैं। तो इसलिए इस प्रकार से जो कम्युनिस्ट विचार है कि सब कुछ संपत्ति देश की है, वो विचार भी असफल रहेगा, क्योंकि आधारभूत रूप से यहां पर भी यही समस्या है कि हम सब चोर हैं, हम सब चोरी करेंगे और फिर आपस में इक्वली बांट लेंगे। तो कम्युनिस्ट जो सरकार है वो किसकी चोरी कर रही है, वो एथिस्टिक है कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये सब संपत्ति हम सब की मिला करके है, हमारे भोग के लिए, हमारे पर्पज के लिए। तो ये इम्परफेक्शन है। तो तो अगेन ये जो विचार है वो हमारी वास्तविकता के विपरीत है कि ये जो प्राकृतिक संपदा है, जो सृष्टि है, वो हमारे भोग के लिए नहीं बनी है, वो नहीं है, वी आर नॉट द प्रोप्राइटर। अगर ये सृष्टि के निर्माता हम होते, इसको बनाने वाले हम होते, इसके पूरी तरह से कंट्रोल करने वाले हम होते, तब हम कह सकते थे कि इसके भोक्ता हम हैं। लेकिन क्या कम्युनिस्ट सरकार या जो हम सब लोग हैं मिलकर के, क्या हमने पृथ्वी बनाई है? क्या हमने ये सब संपदाएं बनाई हैं? क्या हम हवा सूरज हम बना रहे हैं? और ना तो हम बना रहे हैं, बना सकते हैं कुछ भी, और दूसरा हम सब प्रकृति के नियमों के से बाध्य हैं पूरी तरह से। क्या कम्युनिस्ट सरकार या कम्युनिस्ट सरकार के अंतर्गत जितने भी नागरिक हैं, क्या वो मिलकर के बारिश अगर नहीं हो तो बारिश ला सकते हैं? नहीं ला सकते, यानी कि वो कंट्रोल है। तो जब स्वाभाविक सिंपल लॉजिक है, जब आप क्रिएटर नहीं हैं, जब आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप किसी के कंट्रोल में हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई है, तो आप कैसे वो जो आपके ऊपर है उसको नकार सकते हैं, उसकी अवहेलना कर सकते हैं? या फॉरगेट अबाउट हिम, वो कुछ नहीं होता, हम अपने हिसाब से देख लेंगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हमारे लिए, ये मूर्खता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे एक कंपनी में आप एंटर करें और वहां पर है, और आप अपने आप अपने हिसाब से उसको चीजों को यूज करने लगे, तो जो कंपनी का मालिक है वो कैसे अलाउ करेगा? वो पुलिस को बुला करके उसको बाहर निकाल दो। तो उसी प्रकार से जो कम्युनिस्ट विचार है उसमें ये इस जो भी हम दिखता है वो हमारे लिए है, इस आधार पे है, भगवान कुछ नहीं है। तो इसीलिए अंततः तो वो चोर है, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, चोर है, सोचते हैं कि ये सब हमारे लिए, हमारे लिए है। तो कभी भी चोर कैसे संतुष्ट हो सकता है? इसीलिए अगर सब तरीके से वो कम्युनिस्ट नेशन जो है, बाकी सब चीजें जो दिखी जाए, अगर काम भी करे वो, लेकिन क्योंकि वो भगवान के प्रति अवहेलना कर रहे हैं उनके आदेशों का, इसलिए प्रकृति को दंड देगी ही। आप इक्वल बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, लेकिन बांटेंगे जब, तब जब होगा, जब होगा ही तो क्या बांटेंगे? करेक्ट, हम नहरें बना रहे हैं, पानी आएगा, पर जब बारिश होगी, नहरों नदी में पानी होगा, तब तो नहर में पानी आएगा। अगर बारिश नहीं होगी तो आपकी नहर बनाए क्या करेंगे आप? तो ये विचार से पूरी तरह से वो आउट है कि हम सब इक्वली बांट लेंगे, पर क्या बांटोगे? जब प्रकृति दंड देगी आपका तो होगा ही नहीं, अनाज ही नहीं होगा, तो क्या बांटेंगे आप? इसीलिए वो भी इसी सिद्धांत पर है, एक चोर और हम सब चोर हैं, हम सब भगवान से चोरी करते हैं और फिर आपस में उसको बराबर बांट लेते हैं। तो इसलिए वो देगा। अभी आज के श्लोक में वैदिक विचार क्या है संपत्ति का, किसकी है संपत्ति? तो ईश्वर परिषद में क्या कहा गया है, सब संपत्ति किसकी है? श्लोक याद, ईशावाश्यम इदम सर्वम। अभी देखिए ये कितना विचार, एकदम से अलग विचार है। ईशावाश्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी जगत में दिखता है वो सब भगवान का है। स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, कम्युनिज्म ये भी कम्युनिज्म है, यस। लेकिन अभी यहां पर कोई इंपर्सनल गवर्नमेंट की सब संपत्ति नहीं है, एक व्यक्ति भगवान उनकी सब संपत्ति है, सुप्रीम पर्सन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ईशावाश्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो स्वाभाविक है फिर हमें उसके पर्पज के लिए ही हर चीज यूज करनी चाहिए। तो वैदिक विचार क्या कहता है कि सब संपत्ति भगवान की है और सब संपत्ति केवल भगवान की सेवा के लिए यूज होनी चाहिए, उन्हीं के पर्पज के लिए होनी चाहिए। जैसे एक नौकर है, और नौकरी कर रहा है किसी के घर में, सफाई करता है, तो वो स्पष्ट है, जानता है कि यहां जो कुछ भी घर में है वो मेरे स्वामी का है, सब कुछ उसी के लिए ही है, इसलिए वो हर चीज को अपने स्वामी के लिए, स्वामी की इच्छा के अनुसार उसको हैंडल करता है चीजों को, उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाता है। और इस प्रकार से करने से स्वामी अपने आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जो उसकी सेवा के लिए जरूरी है। बल्कि आगे और प्रेम संबंध भी आगे डेवलप हो सकता है। तो उसी प्रकार से वैदिक विचार है कि सब संपत्ति भगवान की है और केवल उसे भगवान के हेतु के लिए ही, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही उपयोग में लाना चाहिए। तो भगवान तो अभी दिखते नहीं, हम लोगों को तो भगवान दिखते नहीं, तो भगवान का क्या आदेश है और भगवान का पर्पज क्या है ये कैसे समझें? तो भगवान इस भौतिक जगत में उपस्थित होते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। जैसे जेल में राजा उपस्थित होता है जेलर के माध्यम से, उसी प्रकार से इस जेल में भगवान यहां पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने विचार को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं, अपने आदेश को। तो यहां बताया गया है जो ब्राह्मण और वैष्णव हैं वो भगवान के डायरेक्ट सर्वेंट हैं, डायरेक्ट सर्वेंट। उनकी चेतना का स्तर इतना विकसित होता है कि वे ईशावास्यमिदं सर्वम ये अंडरस्टैंडिंग में फिक्स्ड होते हैं प्रॉपरली। क्योंकि ब्राह्मण के गुण क्या बताए गए हैं? क्षमा दमा तप शौचम शांति आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ब्राह्मण को इंद्रियों पर वश होता है, मन पर वश होता है, तपस्या के प्रति उन्मुख होता है, शुचि हमेशा साफ सुथरा रहता है, टॉलरेंट होता है, फॉरगिविंग नेचर होती है, सिंपल हार्टेड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, और ज्ञान अर्थात शरीर और आत्मा, शरीर और अध्यात्म में अंतर क्या है, जड़ और आध्यात्म में अंतर क्या है उसको पता होता है, और विज्ञान भगवान के साथ सब चीज का क्या संबंध है और उस संबंध में किस प्रकार से कार्य करना है ये सब उसको प्रैक्टिकली पता होता है, और आस्तिक है उसकी भगवान में अटूट श्रद्धा होती है। तो इसीलिए जो ब्राह्मण है और वैष्णव, जो ब्राह्मण से भी जो स्वतः ब्राह्मण है और भी आगे हैं, तो वो स्पष्ट हर चीज को भगवान की संपत्ति के संपत्ति है ऐसा देख सकते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार हर संपत्ति को भगवान के प्रयोजन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहां पर उपाय जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का कार्य एकमात्र कार्य होता है कि वो शब्द ब्रह्म का प्रचार करें। तो भगवान की जो आदेश है, भगवान की जो वाणी है, वो शब्द के रूप में, शास्त्रों के रूप में उपस्थित है जिसे ब्राह्मण समझते हैं, क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए ब्राह्मण या वैष्णव होना जरूरी है। जब तक व्यक्ति की चेतना तमोगुण रजोगुण में मिश्रित है तब तक वो शास्त्रों को या भगवान को नहीं समझ सकता। इसलिए ब्राह्मण और वैष्णव है जो भगवान को समझ सकते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो इसलिए समाज के अंदर ब्राह्मण और वैष्णव ही भगवान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वाया मीडियम है। इसलिए ब्राह्मण और वैष्णव आध्यात्मिक गुरु का पद स्वीकार करते हैं, जो भगवान के और अन्य लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम का काम करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। सामान्य व्यक्ति की भगवान तक पहुंच नहीं है, जो तमोगुण रजोगुण से आच्छादित है वो भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान उन तक पहुंचते हैं। तो यहां क्या कहा गया है, इसलिए कि ईशावास्यमिदं सर्वं, सब संपत्ति भगवान की है और इस भौतिक जगत में भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो है ब्राह्मण और वैष्णव, इससे सब संपत्ति इस भौतिक जगत की ब्राह्मण और वैष्णव की है। रिवॉल्यूशनरी विचार। क्या कह रहे हैं कि क्षत्रिय वैश्य और शूद्र केवल उन्हीं की कृपा से खाते हैं, उनको दान देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनकी संपत्ति नहीं है। दान वो दे सकता है जिसकी संपत्ति हो। तो क्षत्रिय शूद्र और वैश्य कोई दान नहीं दे सकते क्योंकि उनकी संपत्ति नहीं है। सब संपत्ति ब्राह्मण और वैष्णव की है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वैष्णव जानते हैं कि सब संपत्ति भगवान की है, इसलिए वो उनकी संपत्ति है, इसलिए वो उसको अपने इंद्रिय भोग के लिए दुरुपयोग नहीं करेंगे और केवल भगवान के हेतु के लिए उपयोग करेंगे। इसलिए भगवान और अपने ऑन बिहाफ ब्राह्मण और वैष्णवों को संसार देते हैं, आप हैंडल कीजिए, ठीक है। तो वो भगवान के प्रतिनिधि होने की वजह से भगवान ये सब संसार उनके हाथ में सौंपते हैं, ब्राह्मण और वैष्णव के हाथ। और जो ब्राह्मण वैष्णव है वो पूरे समाज को, उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, ज्ञान के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा सब लोगों को भगवत भक्त बनाया जाए, भगवान की तरफ उनको ले जाया जाए। तो इस महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने के कारण जो इस भौतिक जगत के अंदर जो भौतिक संचालन है, जो धन संपत्ति का को को रखना है, उसमें वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसीलिए वो इस संसार की जो अमानत है उसे क्षत्रिय वैश्य के हाथ में सौंपते हैं कि आप इसकी देखभाल करो। जैसे हम लोग जब पैसा होता है तो हम पैसा कहां रख देते हैं, बैंक में रख देते हैं कि अपने घर में रखेंगे तो इसका हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए बैंक बना दिए गए हैं कि आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाइए, आपका जितना भी एक्सेस मनी है, पैसा है, आप सब बैंक में रख दीजिए, लॉकर्स में रख दीजिए, सेफ डिपॉजिट्स में रख दीजिए, सेविंग अकाउंट्स में रख दीजिए, और जब जरूरत हो आप वहां से विड्रॉ कर लीजिए, है ना। तो बैंक में जो जिसका खाते में जितना पैसा है वो बैंक का पैसा नहीं होता है, वो उस व्यक्ति का पैसा है जिसने जमा किया है, और जब वो चाहे उसको निकाल सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से वैदिक विचारधारा के अनुसार, यानी भगवान की सिस्टम के अनुसार, सब कुछ वैष्णव और ब्राह्मणों का है, और वैष्णव ब्राह्मण उस अमानत को वैश्यों और क्षत्रियों के हाथ में सौंपते हैं उसको हैंडल करने के लिए, कि आप इसको हैंडल करो अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्राह्मण। इसलिए किसी जब भी खर्च करना होगा किसी के लिए तो उनको गाइडेंस लेनी होगी ब्राह्मणों से, दान देना भी एक प्रकार का खर्च है, तो दान देना होगा तो ब्राह्मणों से देना होगा। तो अगर जैसे यहां उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसे क्षत्रिय है मान लीजिए या वैश्य है, वो दान देना शुरू कर देंगे, जैसे आजकल क्या हो रहा है, एनजीओ बनाई जा रही हैं अलग अलग प्रकार की, ठीक है, गरीबों को खाना बांटो, लास्ट टाइम प्रभुपाद जी इसको बता रहे थे, गरीबों को खाना बांटो। अभी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, सरकार का ये कार्य है कि कोई व्यक्ति भूखा ना हो, ये उनका कार्य है, उनको सौंपा गया है ब्राह्मणों के द्वारा या वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, ये क्षत्रियों का कार्य है, देखा जाए कि सब लोग अपना अपना कार्य में एंगेज हो प्रॉपरली, और फिर रेसिप्रोकेशन सबको अपना अपना खाना मिले। लेकिन वर्तमान समय में सरकार निठल्ली और फिर एनजीओ बना करके लोग अपने आप धन एकत्र करते हैं पब्लिक से, वो हमें गरीबों को खाना खिलाना, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग खुद उसमें सब घोटाला करके अपने आप आधा से आधा अपने आप खा लेते हैं। तो इस प्रकार से जब समाज ब्राह्मणों के द्वारा निर्देश नहीं होता है और वैश्य और क्षत्रिय स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिनको बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि ब्राह्मण है, समाज की बुद्धि ब्राह्मण है, क्षत्रिय में बुद्धि, वैश्य क्षत्रिय में बुद्धि डिपार्टमेंट नहीं है, वो ब्रेन डिपार्टमेंट नहीं है, वो आम हार्ट डिपार्टमेंट है, बेली डिपार्टमेंट है। तो अगर उनको मार्गदर्शन नहीं है ब्राह्मणों का, वो नहीं जानते कि गरीबी की समस्या कैसे दूर हो सकती है, भुखमरी की समस्या कैसे दूर हो सकती है, उनको नहीं पता, वो सोचते हैं हाँ धन एकत्र करके सबको बांट दो तो आयाता हो रहा है, ठीक है, गरीबी है पैसा दे दो, और वो पैसे से क्या करते हैं, शराब पीते हैं, सरकार झोपड़पट्टी वालों के लिए रूम बनाती है, क्वार्टर बनाती है, और झोपड़पट्टी वाले क्या करते हैं, उस क्वार्टर को रेंट पे देते हैं, और उस रेंट से शराब पीते हैं और खुद तो वहीं रहते हैं झोपड़पट्टी में। तो इस तरीके से यदि हम एक एक चीज को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि वर्तमान में क्या हो रहा है, ब्राह्मणों का अभाव है। ब्राह्मणों का अभाव मतलब जो भगवान की जो 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 सिस्टम है, जो ब्राह्मण जिसको समझ सकता है, वो सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि ब्राह्मण नहीं है। इसलिए पूरी सत्ता किसके हाथ में आ गई है, वैश्य, विशेष रूप से आजकल कलयुग में वैश्यों के हाथ में सब सत्ता है। जो तथाकथित आज इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी वैश्यों के हाथ की कठपुतली हैं। जितने बुद्धिमान लोग हैं वो सब वैश्यों के द्वारा खरीद लिए आते हैं। सब जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं IITs में, वो सब मोहरे हैं, वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में मोहरे हैं, उनके लिए नौकरी करते हैं। आप ये करो, आप ये करो, ये करो, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम उद्योगपतियों के द्वारा निर्देश होता है, ये सिलेबस होना चाहिए, ये सिलेबस होना चाहिए। पहले कैसे टेक्निकल कैसे शुरू हुआ, तो उनका बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, क्योंकि आज के वक्त समय में पैसा ही शक्ति है, तो पैसे का काम क्या है, वो वैश्य मर्केंटाइल पीपल, तो उनका हमें शक्ति है। ठीक है, हमें अपनी फैक्ट्रीज के लिए लेबरर्स चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, तो ये सब एजुकेशन, ये सब शास्त्र वास्त्र, ये सब हटाओ, उसको बाहर करो। धीरे धीरे आप देखिए बाहर हो रहा है, क्या लाओ, ये लाओ। तो जो सरकार है वो भी उनके हाथ में, कौन आएगा, कौन सेलेक्ट, कौन इलेक्ट होगा, तो इलेक्शन के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, करेक्ट। आज तक बिना पैसे के आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, तो पैसा कौन देगा, वैश्य देगा। इसलिए जब वो पैसा देगा तो जैसा कहेगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज ब्राह्मण भी वैश्यों की मुट्ठी में है, क्षत्रिय भी वैश्यों की मुट्ठी में है, और क्षत्रिय स्वतंत्र भाव से हो गए, और फिर उधर लिबरल्स हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। तो जो तमोगुण रजोगुण संचालित लोग हैं उनके हाथ में पूरी सत्ता है, जिस वजह से पूरे समाज की जो व्यवस्था है पूरी हर डिपार्टमेंट में कैओटिक कंडीशन, अराजकता फैली हुई है, करप्शन। क्यों? क्योंकि वैश्य क्या होता है, यदि वो ब्राह्मण के द्वारा कंट्रोल नहीं है, क्षत्रिय के द्वारा कंट्रोल नहीं है, तो उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है, रजोगुण, लोभ, अननेसेसरी प्रोडक्शन, एक्सेस चीज जो जरूरत नहीं है उसका प्रोडक्शन कर, ये वैश्य की मेंटेलिटी है। इसलिए जरूरी है कि वैश्य के ऊपर अंकुश हो क्षत्रिय का, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये चीज प्रोड्यूस नहीं करनी है, ये करना है। ऐसे ही क्षत्रिय, क्षत्रिय को भी कंट्रोल जरूरत है ब्राह्मण की, नहीं तो एक देश अभी और जमीन चाहिए, अभी दूसरे देश का आक्रमण करो, लेकिन ब्राह्मण सुधारे क्यों, किस लिए, व्हाट इज द पर्पस। तो इस प्रकार से ब्राह्मण समाज में, पूरे समाज के अंदर भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण भगवान के इस सिस्टम को लागू करता है। तो जो समाज की जो वर्तमान अर्थ सब समस्याओं का कारण है वो है कि प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कृष्ण का, भगवान का जो ये सिस्टम है इस समाज के लिए वो खत्म हो रहा है, ब्राह्मणों का अभाव। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये संस्था शुरू की, किस लिए, सबसे पहले पहला पर्पज क्या था इस संस्था को शुरू करने के पीछे, टू क्रिएट सम ब्राह्मण, वहां से शुरू होती है इलाज। जब बुद्धि डिपार्टमेंट ठीक होगा तब आगे सब कुछ ठीक होगा। इसलिए सबसे पहले श्री प्रभुपाद ने क्या कहा, क्या किया, जहां भी उपस्थित हैं जो लोग ट्रेन हो सकते हैं ब्राह्मण में उनको पकड़ा, ट्रेन किया कुछ। तो स्पेशली दिस मूवमेंट फर्स्ट फोकस इज क्रिएटिंग ब्राह्मणास, ट्रेनिंग ब्राह्मण, फिर उन ब्राह्मणों का और वैष्णवों का अभी ये कर्तव्य है कि वो अभी क्षत्रिय ट्रेन करें, वैश्य ट्रेन करें और शूद्रों को मार्गदर्शन दें। इस प्रकार से ही केवल ये भगवान की जो पूरी व्यवस्था है ये समाज में लागू हो सकती है, और समाज की जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो सकती हैं, और धीरे धीरे सभी लोग कृष्ण भक्ति की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि वर्तमान युग में समाज का संचालन ब्राह्मणों के उपदेश आदेशों से नहीं होता, अतः सारी जनता पाप कर्म में मग्न है, क्योंकि गाइडेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, ये नहीं है। केवल इंद्रिय भोग ही, केवल अनावश्यक इंद्रिय भोग वैश्यों के द्वारा प्रेरित, वही जीवन का लक्ष्य हो गया तो सब, फिर पाप और पुण्य का भेद नहीं किया जाता, ये इनके इन प्रकार हैं, जैसा भी हो भोग करो एक्सेप्ट, तो फिर पाप कर्म, तो फिर उसके लिए जो जो दुर्बुद्धि लोग हैं वो फिर छेड़ निकालते हैं कि भगवान है ही नहीं इसलिए पाप करने, इसके ऐसे विचार ये जो है ये पिछड़ापन है, डरो मत, कोई है नहीं देखने वाला, कोई भगवान नहीं है, कोई सुपरवाइजिंग अथॉरिटीज नहीं है, जैसे आप चाहते हैं वैसे करो। उसके लिए बड़ी बड़ी हमको सिखाया जाता है सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, क्लास, एक एक क्लास में साइंस के माध्यम से कि कैसे देखो भगवान नहीं है, बिल्कुल उसको सिस्टमैटिकली हमारी बुद्धि में डाला जाता है, जिससे कि पाप कर्म करने के लिए जो डर है वो पूरी तरह से निकल जाए, हम बिल्कुल फ्री हो जाए पाप करने के लिए। और इस वजह से आज समाज में, संसार में पाप कर्म हर व्यक्ति, जैसे हम कल ही बता रहे थे, जैसे देख रहे हैं सब पाप कर्म इतने खुलेआम हो रहे हैं कि कोई भेद ही नहीं रह गया। एक्सेप्टेड, ऑल एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड एज वेरी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल एक्सेप्टेड हो गया है। जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था वो चीजें आज आम हो गई हैं, इजी एक्सेप्टेड हो गया है। एज ए होमोसेक्स इज एक्सेप्टेड, जो पहले कभी सोचा भी नहीं आता था इज एक्सेप्टेड, लीगलाइज। अगर कोई होमोसेक्स के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये परिणाम है ब्राह्मणों के ना होने का, पाप कर्म बढ़ेंगे, और पाप कर्म की वजह से क्या होगा, फलस्वरूप सबों को प्रकृति दंडित करेगी। ये हो रहा, नो रेन, रेन सिस्टम नहीं, ग्रोथ नहीं, प्रोडक्शन नहीं, गर्मी सर्दी ये सब प्रकृति अनेक प्रकार से दंडित करेगी। तो श्री प्रभुपाद जी यहां कितना स्पष्ट और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि सभी भौतिक समस्याओं का कारण क्या है और उसका फिर समाधान क्या है। तो समाधान है, सबसे पहले ब्रेन डिपार्टमेंट स्ट्रांग करना पड़ेगा, और फिर जो ब्रेन डिपार्टमेंट है वो जो ब्राह्मण है वैष्णव है उनका, उनको उत्तरदायित्व लेना होगा अन्य सभी को ट्रेन करने का, तब समाज धीरे धीरे सुधर सकता है। तो जो ब्राह्मण है उसको भी योग्य होना पड़ेगा तभी वो ये कार्य कर पाए। तो यहां कहा गया है कि ब्राह्मण भगवान का प्रतिनिधि होता है, सब संपत्ति उसकी होती है और वो अन्यों पर निर्भर नहीं होता है। तो ब्राह्मण को ऐसा होना पड़ेगा कि वो अन्यों पर निर्भर नहीं है। वर्तमान समय में जो ब्राह्मण है, तथाकथित ब्राह्मण, तो वो तो भिखारी जैसे हैं। तो वो तो ब्राह्मण बने हैं, ये अच्छा है, जीविका कमाने का अच्छा तरीका है, इजी वे, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण अर्थात उसे पूर्ण विश्वास है कि रक्षिष्यति कृष्ण, भगवान रक्षण करते हैं, भगवान सबको दे रहे हैं, और जब मैं भगवान की सेवा में लगा हूं तो मुझे भगवान देंगे, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट। इसको उसको ब्राह्मण को यह साक्षात्कार होना चाहिए कि भगवान रक्षा करते हैं। जैसे इसने इस संबंध में उदाहरण शायद पहले भी दिए होंगे, एक बार रथ यात्रा थी लंदन में, तो वहां पर जयद्वीप महाराज और भक्ति विकास महाराज खड़े थे, तो एक स्त्री आई क्रिश्चियन, उनसे पूछी कि से आप कौन, क्या है यहाँ, तो आपका ये खाना पीने का ये सब कैसे प्रबंध होता है, कहाँ से होता है। तो बोले जयद्वीप महाराज, बोले भगवान भेजते हैं, कृष्णा सेंट। तो उस स्त्री को समझ में नहीं आया कि क्या मतलब कृष्णा सेंट, कृष्णा के दिखते नहीं, हाउ डज ही सेंड, दिखता नहीं कुछ, हाउ डज, उसको समझ में नहीं आया कृष्ण बाल नहीं कृष्ण से। तभी एक भक्त आया प्रसाद की प्लेट लेकर के उन दोनों के लिए, जयदेव महाराज के लिए और भक्ति का, जयदेव महाराज बोले देखो कृष्ण से। उनको तो पता भी नहीं था कि यहाँ प्रसाद अरेंज है, रथ यात्रा के टाइम में वहां पर प्रसाद है, उनको पता नहीं था कृष्ण से। एक्चुअली ब्राह्मण अपनी चेतना के विकास से, अपनी शरणागति से ये अनुभव करता है कि कृष्णा एक्चुअली कृष्ण, एक्चुअली सबके लिए तो भगवान ही भेज रहा है, लेकिन ब्राह्मण और वैष्णव इसको समझ सकते हैं। जैसे हम अभी सांस ले रहे हैं, ये हवा कौन दे रहा है, कोई दे रहा है तभी तो हम ले रहे हैं, हम सोचते हैं वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये तो है ही नहीं, इट इज मेड। बच्चा सोचे, छोटा सा बच्चा है, नारायण बच्चा है, साइकिल आ गई इसकी, एक दिन नई साइकिल, उसको इच्छा थी साइकिल आ गई, ओ साइकिल आ गई, आ नहीं गई है, पिताजी ने साइकिल लाके दी है, किसी ने आपको लाके दी है, अपने आप से नहीं आ गई। तो उसी प्रकार से हम वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, सूरज तो है ही ना, पर सूरज नहीं भी हो सकता है ना, है ही क्यों, हवा है ही क्यों, ऑक्सीजन ही क्यों है, सब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं, वो पानी है, वो समुद्र में वो खारा पानी है, और वो सिस्टम ये क्यों है कि वो सब उड़ेगा पानी और आप आएगा, तो क्यों है सिस्टम, आप जमीन में पानी खोते नीचे पानी एकत्र है, क्यों है वो, बट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये तो है ही अपने आप है। तो वो तो जैसे हो जैसे बच्चा है उसको नहीं पता, नादान है कि सब उसके माता पिता उसके लिए अरेंज करें, उसको पता नहीं है, वो सोचता है ये तो बस ऐसे ही। तो एक्चुअली तो सभी कुछ तो भगवान खुद भेज रहे हैं, खुद कर रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, लेकिन भगवान एक तरीका दे रहे हैं कि आप, मैं सप्लाई कर रहा हूं लेकिन आप इतना इस प्रकार से करके करो तो आपको ये सप्लाई मिल जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट करंट भेज रहा है लेकिन यहाँ पॉइंट दे दिया है अभी आपको कनेक्शन लगाना पड़ेगा। तो उस प्रकार से जिस स्तर से आपकी भगवान की सेवा करने की श्रद्धा है, इच्छा है, करते हैं आप, उसी अनुपात में भगवान आपको व्यवस्था करते हैं, उतना काम आपको करना पड़ता है। जिसकी श्रद्धा बहुत कम है, जो भगवान की सेवा के उन्मुख नहीं है, जैसे हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमें इस भौतिक जगत में कुछ कार्य करना पड़ता है, भगवान सप्लाई करते नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के प्रति बहुत, जो जितनी शरणागति अधिक होती है उनको अपने शरीर की देखभाल के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में निमग्न है, भगवान खुद अपने हाथ से आकर के उनको दे सकते हैं खाने के लिए भी, उनको खुद उगाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और आध्यात्मिक जगत में हम जाते हैं तो भौतिक शरीर ही नहीं रहता है तो खाने पीने की कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि वहां सब कृष्ण प्रेम में है, तो भगवान वहां पर किसी को कोई एंडेवर की जरूरत नहीं है, यू सिंपली एंजॉय विद मी। तो जैसे जैसे हमारा विकास होता है वैसे वैसे हम स्वतंत्र होते जाते हैं अपनी चिंताओं से, मेंटेनेंस की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियली हम मेंटेनेंस की चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते, भगवान की जितनी सेवा में शरणागत होंगे उतनी ही भगवान हमें मुक्त करेंगे इस टेंशन से, मेंटेनेंस की टेंशन। तो इसीलिए जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जो शुद्ध है, उसे अपना अनाज उगाने की आवश्यकता है। जो ब्राह्मण और वैष्णव है उसे जरूरत नहीं है। अगर उसको वैश्य और शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय कुछ नहीं भी दें तो भी वो जिएगा, क्योंकि एक तो उसको विश्वास है और दूसरा वो बहुत सरल है। तो भागवतम में एक श्लोक है, तो क्या सड़क पर चिथड़े कपड़े हुए नहीं, चिथड़े फेंके हुए कपड़े नहीं पड़े हैं जिनसे हम लोग अपना तन ढक सकते हैं? क्या पेड़ पर फल नहीं लग रहे हैं जिनको आप खा के अपनी प्यास बुझा, भूख मिटा सकते हैं? क्या नदियों में जल नहीं है जिसको आप पी करके, तालाब में कहीं जल नहीं है जिसको आप पी करके प्यास बुझा सकते हैं? तो फिर क्यों किसी अमीर के घर जाकर के आप हाथ फैलाएं? ये वैष्णव और ब्राह्मणों का ये स्तर है, वो सरल होते हैं, उन्हें इंद्रिय भोग के प्रति ललायत नहीं होते हैं कि उन्हें हमेशा पालक पनीर चाहिए। नहीं, जो मिला संतुष्ट ये न केनचित, ये उसका स्वभाव, जो मिल गया उससे संतुष्ट है, इस वजह से वो फ्री हो जाता है सबसे। जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, जो भी भगवान जिस हालत में रखे उससे संतुष्ट आता है, तो फिर वो फ्री हो जाता है, फिर उसको कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं होती कि मुझे इतना कमाना है, मुझे ये करना है, नहीं। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट है ना। तो ब्राह्मण के अंदर ये गुण होने चाहिए, संतुष्ट है के ना, जहां जैसा भगवान ने जैसा उसको उपलब्ध कराया, क्यों? क्योंकि वो सेवा के अंदर आनंद प्राप्त कर रहा है, इसलिए ही नो मोर हैंकरिंग फॉर मटीरियल है, इसलिए वो संतुष्ट। लेकिन जो निम्न वर्ग है वो इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते, दे वॉन्ट सम मटीरियल हैप्पीनेस, उनको भौतिक संतुष्टि चाहिए, तो इसलिए फिर उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप उगाओ, यू वॉन्ट टू एंजॉय नाइस डिशेज, देन यू गो। लेकिन ब्राह्मण वैष्णव, तो जो ब्राह्मण और जो वैष्णव है वो किसी के आश्रित नहीं होते हैं, वो भगवान के आश्रित होते हैं, इसीलिए वो किसी के गुलाम नहीं होते हैं, इसीलिए वो स्पष्ट भगवान के वचन को रख सकते हैं। आजकल के तथाकथित ब्राह्मण और जो ब्राह्मण हैं तो वो लोग आश्रित होते हैं, लोग जैसे विवाह कराने जाते हैं तो अगर मुहूर्त है एक घंटे बाद तो व्यक्ति बोलेगा अरे भाई टाइम नहीं है, अभी 10 मिनट बाद मुहूर्त निकाल दो। अच्छा अच्छा, अगर बोलेगा नहीं मुहूर्त नहीं निकलता, बोले कहते ब्राह्मण जाओ तो दूसरा ब्राह्मण ले आएंगे, तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है 10 मिनट बाद मुहूर्त निकाल देते हैं।
बंदे को ही सेट करते हैं।
तो ये उदाहरण है कि ब्राह्मण कैसे दिख जाते हैं, क्योंकि तो वो कुत्ते की तरह से आते हैं, यार आई एम गिविंग यू मनी। सही, ऐसे गुरु भी आते हैं, वैष्णव भी आते हैं, तथाकथित गुरु अपने शिष्यों के ऊपर आश्रित रहते हैं, क्योंकि भगवान का आश्रित नहीं है। तो सोचते हैं अगर ये शिष्य को मैंने कुछ बोल दिया कि मांस खाना मछली खाना बंद कर दो तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा, तो इससे हाँ ठीक खाओ कोई बात नहीं, तो बिक जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि ब्राह्मण वैष्णव कभी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उस पर भगवान पर निर्भर होना चाहिए, इसलिए वो स्वतंत्र है। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे भले उसको वो निकाल दे माने नहीं, न करो। इसलिए उनको ये निर्भरता होनी चाहिए उनकी भगवान के, तभी वो ब्राह्मण का पद स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तभी वो व्यक्ति संन्यास ले सकता है, नहीं तो नहीं, वो कोई खेल नहीं है। तो ये समर्पण होना चाहिए, तभी वो ब्राह्मण का कार्य कर सकता है, तभी वो भगवान की वाणी को एज भी दे सकता है। जैसे श्री रूपा, रूपा जी का अमेरिका, वो किसी पर निर्भर हो गए, 40 रुपए भगवान पर निर्भर हो गए, कोई खाने का ठिकाना नहीं, कहाँ डिपेंड, इसलिए तो बोल सके कुछ भी। उनके शिष्य बोले, स्वामी जी आप यदि अनुयायी आते हैं यहाँ पर तो आपको ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है इसमें थोड़ा सा कंसेशन देना पड़ेगा। बोले नहीं, आई डोंट नीड डिसाइपल्स, आई एम नॉट डिपेंड ऑन माई डिसाइपल्स, कोई डिसाइपल नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन अन्य स्वामी जाते हैं वो सब पाश्चात्य जगत के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए गए हैं वहां। तो ब्राह्मण और वैष्णव कभी भी अपनी जीविकोपार्जन के लिए चिंतित नहीं होते हैं, किसी का आश्रित नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मीन डिपेंडेंट ऑन गॉड, भगवान का आश्रित होते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ब्राह्मणों को सबसे पहले ऐसा गुण उनके अंदर होना चाहिए, और उनको सभी भगवान के जो नियम है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सबसे पूरी तरह से रियलाइज नॉलेज होनी चाहिए कि यस दिस इज हैपनिंग, तब वो समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं, तब सही क्षत्रियों को मार्गदर्शन मिलेगा और सही वैश्य, और फिर पूरी व्यवस्था सही से चलेगी और सब लोगों का विकास होगा, भगवान की तरफ सब लोग जा सकेंगे। तो ये इतना उन्नत विचार है वैदिक संस्कृति का, और कहाँ है वर्तमान समय में डेमोनिक मेंटल, और फिर भी हम बोलते हैं ये आदि मानवों ने लिखा है, तो इट इज रेडिकुलर। तो इसलिए हम लोगों को बहुत गहराई से इस भागवतम का अध्ययन करना, ये और प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं ये बार बार, केवल प्रभुपाद जी ये पुस्तक कब लिखे हैं, ये भागवतम कब लिखे, रात को लिखे हैं, जब सब लोग सो जाते हैं, सो गए उसके बाद में रात को 12 बजे उठ के 12 से 4 बजे तक भागवतम लिखे। तो प्रभुपाद जी इतना बड़ा पत्र लिख रहे हैं, केवल लिखने के लिए तो नहीं लिख रहे हैं, अगर ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है या नहीं उनकी इच्छा है कि प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना है, तो मनोरंजन के लिए तो भाई फिर रात को उठ करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो प्रभुपाद जब ये लिख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं इसको, इसलिए कि जो इसको पढ़ने वाले हैं वो इसको केवल एक कान से पढ़ करके दूसरे कान में निकाले नहीं, इसको अपनाएं। ये तभी जो भागवतम में जो दिया गया है कि भागवतम कलयुग में जो अघम जो पाप में जीवन है लोगों का उसमें क्रांति लाएगा, तब वो संभव होगा, जब इसको पढ़ने वाले यानी हम प्रभुपाद जी के अनुयायी इसको केवल थ्योरी नहीं समझेंगे कि ये तो बस कहने के लिए है, ऐसा संभव है ऐसा, ये तो कहने के, अगर केवल ऐसा कहने के लिए होता तो प्रभुपाद जी इतना इसके ऊपर नहीं वो जो वो टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। तो ये सब यथार्थ में एप्लीकेशन के लिए है, ये सब इंस्ट्रक्शन, इसमें ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम जो जिस स्थिति में, जो ब्राह्मण है उसको ये ब्राह्मण के गुण डेवलप करने चाहिए, जो क्षत्रिय जो वैश्य जो जिस स्थिति में है उसको वो गुण डेवलप करने चाहिए, तभी वो प्रभुपाद जी का सही फॉलोअर कहलाया जाएगा। इसलिए हमें हमारे मूवमेंट को बाकी मूवमेंट की तरह नहीं रखने, जैसे क्रिश्चियनिटी चर्चियनिटी हो गई, क्राइस्ट को फॉलो करने की जगह इंस्टीट्यूशन, बस एक हमको इंस्टीट्यूशन मेंटेन करना है, हमारे खाने को चाहिए, अगर हम सबको बोलेंगे कि होमोसेक्स अलाउ नहीं है तो हमारा खाना बंद हो जाएगा, डोनेशन बंद हो जाएगा, इसलिए अभी ये नहीं बोलना है, इसलिए अभी सब चेंज कर दिया, बाइबल चेंज कर दिया। तो ऐसे ही हमको नहीं बनना है कि पब्लिक को प्लीज करने के लिए हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को बदल दें, कंप्रोमाइज कर लें, ऐसा नहीं करना, नहीं तो हम भी चर्चियनिटी के खत्म हो जाएंगे, मिल जाएंगे सब, नाम रहेगा क्रिश्चियनिटी चर्चियनिटी लेकिन एसेंस नहीं है, कुछ कुछ शक्ति नहीं है, जस्ट लेबलिंग रबर स्टैंप है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है?
एक समय में लोग ऐसे मूल से भी ऐसे थे जो ब्राह्मण की पोजीशन संभाल सकते, लोग एक्सप्लोइटेशन शोषण नहीं होता था। लेकिन अभी अगर हम देखने जाए क्योंकि ये ब्राह्मण और ऐसे लीडर्स की पोजीशन बहुत बड़ी पोजीशन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन यानी कि शोषण करने की संभावना रहती है, उनको पूरा पावर होता है, तो अगर कोई करप्ट हुआ तो एक्सप्लोइटेशन कर सकता है। तो वर्तमान समय में तो सभी लोग ऐसे ही मेंटेलिटी वाले हैं, जैसे अगर
नहीं, इसलिए तो हमको ब्राह्मण को ट्रेन करना है कि ऐसे मेंटेलिटी वाला नहीं रहे, नहीं तो फिर ब्राह्मण कहलाने का मतलब ही क्या है उसका। इसलिए तो ये सब शास्त्र है कि उसका हृदय परिवर्तन हो, उसकी एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी खत्म हो, वैष्णव बने। वैष्णव मतलब कितनी महान है, तभी तो वो दूसरों को इंप्रेस भी कर सकता, नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके आपने पावर आई भी नहीं, इफ इज नॉट हैविंग एट प्रेजेंट एटलीस्ट, क्योंकि अभी वो सिस्टम तो पूरा चरमरा गया है। तो अगर यदि इस समय किसी ब्राह्मण को समाज को जैसे शतोपा ब्राह्मण वैष्णव शुद्ध वैष्णव वो जब इस समाज को इन्फ्लुएंस करता है बिकॉज ऑफ दैट हाई क्वालिटी, सो देन देयर इज नो रिस्क, वेरी मीन सो चांसेस ऑलवेज देयर, बट देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट वो तो पॉसिबल तो है ही, और वो तो उसी प्रकार से संभव होगा ही कि उसको ट्रेनिंग होना चाहिए, ही शुड बी रियली ब्राह्मण, ये एक्सपेक्टेड मेंटेड नहीं रहे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा सिस्टम दिया ना, सो वी हैव टू रेगुलरली चैंट अवर राउंड्स, वी हैव टू फॉलो फॉर एट प्रिंसिपल, जिससे कि ये जो कलमश है ये अंदर घुसे ही नहीं, प्रिवेंटिव। लेकिन यहां पर भी हम फ्लैक हुए, कोई भी हुआ तो यू गो डाउन एंड देन ही विल लूज हिज पावर एज वेल लाइक अदर डिक्टेटर्स, सो इट विल नॉट स्टे एनी वे समटाइम्स। सो चेंज जो लाएगा वो तो वही लाएगा जो चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को जो पूरा करेंगे वो लोग, तो वही करेंगे ना जो उनको फॉलो करेंगे, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू, दे विल बी बिकम लाइक हिटलर एंड दे विल गो डाउन देन बी स्मैश विल बी डिस्ट्रॉयड। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कौन सा वर्ण है, बिग क्वेश्चन इस कौन के सब डिवोटीज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारा वर्ण कौन सा है, क्योंकि हम भगवद्गीता में और भागवतम में हर श्लोक में यही सुनते हैं कि सबको अपना अपना नियत कर्म करना चाहिए, सबको ब्राह्मण, तो हम कौन से, हम सोचते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुरू भी कौन से, फिर एक लगता है कि अरे हम तो वैष्णव हैं, हम तो इससे ऊपर हैं, हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, तो ये सब बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअली हम है कौन, हम वैष्णव हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्या है हम लोग, आइडेंटिटी क्राइसिस, हम है कौन। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं वैष्णव का स्पेसिफिक मीनिंग है शुद्ध भक्त, वो बहुत ऊंची स्थिति है। तो शुद्ध भक्त ना वैष्णव है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, वो उनसे अलग है, क्योंकि उसको समाज में अभी कोई, उसको समाज से कोई अपेक्षा नहीं है, उसको देहात्म बुद्धि नहीं है, इसलिए वो जो ये सिस्टम है वर्ण सिस्टम जो समाज के अरेंजमेंट के लिए है, उसके उसको कोई सरोकार नहीं है, उससे डिपेंडेंट नहीं है वो उसके ऊपर, इसलिए वो उच्च स्थिति है, वैष्णव इससे परे है। हाँ, दूसरों को सिखाने के लिए वो निश्चित रूप से वो भी अपने को किसी वर्ण के अंदर रख सकता है सिखाने के लिए, जैसे शिवपुरुपाल वैष्णव है लेकिन एक ब्राह्मण की दृष्टि से उसको सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर वैष्णव स्वतः ब्राह्मण तो होता ही है, इन द सेंस कि वो भगवान में विश्वास रखता है और सबको ये ज्ञान दे सकता है। लेकिन शुद्ध भक्त बनने के समय तक जब हम साधना स्तर में होते हैं तब हम गुणों से प्रभावित होते हैं, और वो हमको रिकग्नाइज करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि हम सीधा गुणातीत हो गए हैं, हम गुणाती नहीं, हम रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बाधित हैं, इसीलिए वर्तमान में हमारे एक एक प्रकार के गुण हैं। तो जब तक हम वैष्णव नहीं बनते हैं, अभी हम वैष्णव बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम वैष्णव नहीं बने, हम वैष्णव बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भक्तिन ठाकुर कहते हैं साधन काल ये पर्यंत हृदय काम आशे से पर्यंत वर्णाश्रमादि अपेक्षा धाके। जब तक हम साधना भक्ति होते हैं तब तक वर्णाश्रम के अनुसार हमें अपने को चलाना चाहिए, यानी कि तब तक हमारे वर्ण होते हैं, लेकिन वो असुरी वर्ण व्यवस्था नहीं है कि हम सोचें मैं ब्राह्मण हूं, नहीं मैं कृष्णदास हूं, लेकिन इस भौतिक संसार में जब तक मैं हूं और जब तक ये देहात्म बुद्धि में हूं तब तक मुझे ब्राह्मण का रोल प्ले करना है, तब तक मुझे क्षत्रिय का रोल प्ले करना है, तब तक मुझे वैश्य का रोल प्ले करना है। तो इस प्रकार से हम वैष्णव इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय क्लासलेस है, क्लास हमारे डिवीजन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, लेकिन क्लासलेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये केवल देह के संबंध में क्लासेस हैं, आत्मा का कोई क्लासिफिकेशन ये नहीं है, आत्मा क्लासलेस, वो सब भगवान के दास, चाहे शूद्र है चाहे वैश्य है चाहे ब्राह्मण। तो इसलिए पहले तो ये समझोगे, फिर तो ब्राह्मण के जो गुण हैं, वर्ण कैसे पता लगता है, चार चीजों से किसी भी व्यक्ति का वर्ण निश्चित किया जाता है, चार चीजों से। पहला है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, एस्ट्रोलॉजी। दूसरा है एल्डर, जो समाज में जो बड़े हैं, माता पिता ब्राह्मण वरिष्ठ जो हैं, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चे का, और जो शास्त्र में जो गुण दिए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, उसके गुणों को देख करके ऑब्जर्व करके निश्चित करते हैं कि कौन सा वर्ण। तीसरा है फैमिलियर लिनिएज, पारिवारिक, उसकी कोई बार्बर का लड़का है, अगर वैदिक संस्कृति के अनुसार चल रहा है काम तो ज्यादा चांस है, काफी अच्छा चांस है कि वो भी वही प्रकार के गुणों को प्राप्त करेगा, ब्राह्मण है तो उसी प्रकार के गुण प्राप्त करेगा अगर संस्कार सब हो रहे हैं तो। और चौथा है विशिष्ट प्रकार के टेस्ट, परीक्षाएं, जिससे उसका वर्ण पता लगे। और ये वर्ण तो जो गुरु है या समाज के एल्डर्स हैं, वो ये सब चीजों को देख करके वर्ण निश्चित करते हैं, इसलिए वो व्यवस्था है कि गुरुकुल। तो बहुत प्रारंभिक स्थिति में जल्दी ही कुछ सालों के अंदर ही वर्ण निश्चित कर करके उसको उसी प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हमारे लिए समझ लीजिए कि वो हम लोग ना तो उस ट्रेनिंग में गए हैं, और इसलिए ट्रेनिंग ना होने की वजह से हम है भी सब संगत, कोई स्पष्ट किसी के गुण नहीं है, स्पष्ट है कोई ब्राह्मण है, सब मिक्सचर, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है किसी का, ब्राह्मण का उसका इंक्लिनेशन था लेकिन उसको शूद्र की ट्रेनिंग मिली, हम सबको शूद्र की ट्रेनिंग मिली है, तो इसलिए सब मिक्सचर जैसे हैं, क्लियर नहीं है। फिर भी हरे कृष्ण जब करने की वजह से हम प्रगति करते हैं और इस वजह से ब्राह्मणत्व की तरफ चलते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो हमको पता लगाने के लिए तो वी सी द गुण, उसके अनुसार हम कुछ हद तक पता लगा सकते हैं, और सिंपल है इंक्लिनेशन। आप देखिए अगर कोई भी व्यक्ति आता है मंदिर में तो उसको अलग अलग प्रकार की सेवाएं करने को दी जाए, और उसको जिस प्रकार की सेवा में वो निपुण अच्छे से करता है, उसको हृदय भी अच्छा लगता है, आई लाइक टू डू दिस। कोई भक्त होते हैं उनको अध्ययन करना, समझाना बताना लोगों को, इसमें उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। और कुछ भक्त उनको नहीं, ये सब समझ में नहीं आता, आप बोलो हमको कुछ मैनेजमेंट करना है, कुछ सब ऑर्गेनाइज करना है, फेस्टिवल, इसमें बहुत इसमें आराम से हम कर लेंगे। कुछ भक्त हैं उनको ये सब बहुत मुश्किल है मैनेजमेंट करना, ये सब हम लोग से नहीं, ये हमारा काम नहीं, ये हमारे नेचर का नहीं, आप हमको बोलो ये काम करना है, ये काम करना है, इसको सफाई करना है, इसे करना है, विल डू इट, सबका अपना अलग नेचर। तो इजी वे है हम क्या किस कार्य करने में हम सेटिस्फाई होते हैं, भगवान की सेवा को कौन सी सेवा करने में सेटिस्फाई होते हैं, और किस में हम दक्ष हैं, किसको हम इजीली कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं, तो वो इंडिकेट करता है हमारा वर्ण। एंड देन वी हैव टू गेट ट्रेन, उसमें हमको फिर ट्रेनिंग की जरूरत है उसी में आगे, जिससे कि हम पक्का हो सकेंगे। यस दैट इज। हाँ जी,
तो ब्राह्मण
अभी जन्मात जायते शूद्रा संस्कारात भवेत द्विजा। तो संस्कार कब से शुरू होते हैं? जन्म से पहले शुरू होते हैं, गर्भधारण संस्कार पहला संस्कार है ना। तो इसलिए जब व्यक्ति का जन्म हो रहा है उससे पहले ही संस्कार तो शुरू हो गए हैं। इसलिए अगर सभी संस्कार सही प्रकार से हो रहे हैं तो ज्यादा चांसेस यही है, ज्यादा चांसेस यही है कि वही प्रकार की आत्मा जो उस प्रकार के लिए इंक्लाइन है वही उसी गर्भ में आएगी, और फिर उसका आगे जो संस्कार जन्म से पहले के संस्कार हो रहे हैं तब तक भी वो ट्रेंड होगा। तो जन्म जब उसका होगा, जब हम उसको देख पाएंगे तब उसके अंदर वैसे लक्षण अधिक अधिक होंगे, और फिर फर्दर अभी भी वो लेकिन ब्राह्मण का कार्य करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए अभी और संस्कार आगे चलेंगे, और फिर उपनयन संस्कार, हाँ उपनयन संस्कार तक पहुंच करके फिर वो द्विजा बन पाएगा। तो इसलिए जन्मात जायते शूद्र हो तो सही है ही कि संस्कार के बिना कोई अपने आप से द्विजा नहीं बन सकता। तो ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ लेकिन संस्कार की वजह से ही वो उसके अंदर अभी ये गुण उपस्थित हुए हैं कि वो ब्राह्मण के लिए ट्रेन होने के लिए लायक है। तो इसलिए वो वाक्य तो सही है कि जन्मात जायते शूद्र संस्कार भवे द्विजा। तो ट्रेनिंग जो देनी है वर्ण संकरा, तो हमें ट्रेनिंग जो देनी है उसके गुणों को देख करके ही देनी है। मात्र ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ लेकिन यदि उसके लक्षण संस्कार यदि ढंग से नहीं हुए हैं या किसी भी कारण से यदि उसके लक्षण ब्राह्मण जैसे नहीं है तो फिर उसको उसी प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए जैसे उसके लक्षण है, तो फिर वो संकर नहीं होगा, फिर वो प्रॉपर जाएगा। तो क्या यही प्रश्न था आपका? या हम वैष्णव बना रहे हैं? अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छा तो जो अच्छा तो जो वर्ण संकर प्रजा है उनको वैष्णव बना रहे हैं तो वो क्या वैष्णव कैसे वो बनेंगे? तो जो वैदिक प्रणाली है उसके अंतर्गत धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है, शूद्र वैश्य और क्षत्रिय कई कई जन्मों के अंदर धीरे धीरे क्रमिक विकास करके वो ब्राह्मणत्व प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में जो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है वैदिक विधि का ये इस समय उपस्थित नहीं है, लेकिन कलयुग में हमारे पास एक और प्रोसेस उपलब्ध है प्रगति का जो लिफ्ट के समान है, जो है हरि नाम। तो वर्तमान समय में हम जैसे शुद्ध से भी निम्न हैं सभी लोग, तो हमारा हम देखते हैं कि प्रगति हो रहा है, लोग ब्राह्मण बन रहे हैं क्षत्रिय बन रहे हैं उनका प्रगति हो रहा है, तो किस आधार पर हो रहा है? वो हरि नाम के आधार पर हो रहा है। तो जो क्रमिक विकास की वैदिक प्रणाली है उससे तो संभव, वो तो बहुत समय लेने वाली पद्धति है, कई कई जन्मों के अंदर प्रगति होता है, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी संस्था का जो आधार है विकास का वैष्णव बनाने का वो है हरिनाम के द्वारा। तो इसलिए हरिनाम के माध्यम से व्यक्ति कोई भी स्थिति में हो वो वैष्णव की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब तक हम शुद्ध वैष्णव नहीं बनते हैं तब तक हमें किसी एक वर्ण में रह करके भगवान की सेवा करनी होती है, उसे साधना भक्ति कहते हैं। लेकिन जो हमारे विकास होने का जो मीन्स है वो है ये डिवोशनल सर्विस हरिनाम। तो वर्तमान समय में इस हरिनाम के माध्यम से वैष्णव बनाए बन रहे हैं। इच्छा शक्ति से दूसरे जन्म में ब्राह्मण, इच्छा और कर्म, वैदिक प्रणाली के द्वारा जो जो ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कर्मकांड इत्यादि जो सब उपासना कांड उन सब करते 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 धीरे धीरे प्रगति होता है। हाँ वो ये भी वैदिक प्रगति है, यदि लिप्त है। हाँ ओके। देखिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं दो प्रोसेस हैं, एक इनडायरेक्ट प्रोसेस और एक डायरेक्ट प्रोसेस। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति कर्मकांड के अंदर पहले आते हैं, कर्मकांड उनको पता नहीं कृष्ण भगवान है और वो उनकी सेवा करना हमारा लक्ष्य है, उनके लिए हमें इंद्रलोक और जाना है और अधिक अच्छे से जाना है, इसे कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड करते 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 थोड़ी बुद्धि ठिकाने आती है तो ज्ञान कांड निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना है, इस स्थिति में आते हैं। और फिर यदि उनमें से वो सफल हुए तो ब्रह्म में लीन होते हैं, और यदि किसी भी स्थिति में यदि वैष्णव के संपर्क में आते हैं तो वहां से वैष्णव बन जाते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। भगवान भगवद गीता में ये ग्रेजुअल प्रोसेस को बताए हैं कि ये एक प्रोसेस है, लेकिन अर्जुन के लिए इसको निर्दिष्ट नहीं किया कि आप इस ग्रेजुअल प्रोसेस से आओ। जो व्यक्ति भक्ति लेने के लिए तैयार है, भक्त बनने के लिए तैयार है, उसे ग्रेजुअल प्रोसेस जाने की आवश्यकता नहीं, वो क्यों टाइम वेस्ट करे? जिसके पास लिफ्ट उपलब्ध है वो क्यों जाए? तो हम वैष्णव इस ग्रेजुअल प्रोसेस को एंकरेज नहीं कर रहे हैं। हमारा केंद्र है, हमारी संस्था का लक्ष्य है लिफ्ट लोगों को देना, और चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, मिशन है, ग्रेजुअल प्रोसेस तो इस कलयुग में नहीं चलेगा क्योंकि बीच में ही रिबर्थ आ जाएगा। हाँ वो प्रोसेस चलते चलते तो ये कलयुग का 10,000 का समय निकल जाएगा सतयुग का, और फिर तो इसलिए ये ग्रेजुअल प्रोसेस वर्तमान समय में नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। चैतन्य महाप्रभु तो लिफ्ट हरिनाम के द्वारा सबको उद्धार कर रहे हैं। इजी है और वर्तमान में एकमात्र प्रैक्टिकल है, हरहर नाम है वो केवलम, देयर इज नो अदर वे। मानसा कर सकता है क्या? देखिए वर्तमान में तो कोई क्षत्रिय है नहीं, देर इज नॉट ए सिंगल क्षत्रिय, देर इज नॉट ए सिंगल ब्राह्मण। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं क्लियर वर्तमान शहर में, तो इसलिए अगर वो कह रहे हैं हम क्षत्रिय इसलिए मानसा कर सकते हैं तो कहते आप क्षत्रिय नहीं है। अगर क्षत्रिय आप होते ओरिजिनली तो उनके लिए अलाउड है। कब आखेट में जाते हैं और शेर को ललकारते हैं, स्लॉटर हाउस में जाकर के वो मांस को दुकान से नहीं खरीदते हैं, तो जिससे वो उनकी जो शक्ति है वो वीर जो वीरता है उसको रिफ्रेश करने के लिए वो ऐसे जाते हैं और शेर को ललकारते हैं, और उसको ऐसे खाते नहीं है शेर को, उसको उसको सेरेमनी उसके निकालते हैं उसको, वो उनके लर्निंग का प्रोसेस। या किसी भी जानवर को मारते भी हैं तो भी खुद उसको मारते हैं और उसको ले सकते हैं, बहुत स्पेशल सर्कम, नॉट जनरली। हाँ जी बिल्कुल, यस यस हाँ नहीं वो बात सही है, ब्राह्मण तो आएगा, लेकिन जो ये वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है, देखिए जो चेंज होगा ना वो इतना जल्दी चेंज नहीं होते हैं गुण। हाँ संकीर्तन ही चेंज करेगा, हाँ भक्ति बनाना पड़ेगा, संकीर्तन से ही चेंज होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो चेंज हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है हम देखते हैं हमारी संस्था के अंदर, प्रभुपाद जी गए 1,000 लोगों को प्रचार किए, उनमें से कुछ लोग तुरंत मांस छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, शुद्ध वैष्णव बन गए। ठीक है तो जो इस प्रोसेस को पूरी तरह से अपनाएंगे एकदम पूरा, लेकिन ऐसे बहुत कम होंगे, रेयर सोर्स। जब हम जन साधारण की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि सबका प्रोग्रेस ऐसे नहीं होने वाला, सभी लोग ऐसे करके शुद्ध वैष्णव नहीं बनने वाले। इसलिए जब तक वो शुद्ध वैष्णव नहीं बनेंगे जन साधारण, उनके लिए जरूरी होगा कि वो वर्ण आश्रम के अंतर्गत रह करके भक्ति सेवा करें। तो इसीलिए जो लोग शुद्ध वैष्णव हैं वो दे आर ऑलरेडी दिल गिव अप, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो शूद्र हैं इत्यादि जो जो उसके जो क्षत्रिय हैं उनको अपने क्षत्रिय के अनुसार वो कार्य करने होंगे, लेकिन वैष्णवों की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है और जो कर्मकांडियों की वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें थोड़ा थोड़ा भेद भी होता है। जैसे कर्मकांडियों की वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्राह्मण हैं तो वो अलग अलग यज्ञ करके कैसे इंद्रलोक जा सकते हैं वो बताएगा, लेकिन जो वैष्णवों की वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें इंद्रलोक नहीं जाना है, उसमें भगवान के धाम जाने की व्यवस्था है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था वो भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन परफेक्टली जो वर्णाश्रम व्यवस्था फॉलो होती है वो वैष्णव ही करते हैं। तो इसलिए हम जो वर्णाश्रम व्यवस्था कह रहे हैं तो उसमें कर्मकांड इत्यादि के अंतर्गत जो नियम है वो पालन नहीं करते हैं, वैष्णवों की अलग विधि है। जैसे सनातन गोस्वामी लिखे हैं हरिभक्ति, क्या हरिभक्ति, हरिभक्ति विलास, वैष्णवों के लिए क्या क्या रिचुअल्स हैं उसको लिखे हैं, तो हमें उसको पालन करना है। तो वैष्णव मांसाहार नहीं करते हैं। हाँ, जैसे अगर आप वैदिक संस्कृति में जैसे भीम हैं तो वो करते थे, तो अगर वो व्यवस्था हो क्योंकि वो उनकी वो शरीर की आवश्यकता के अनुसार है, तो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था जब पूरी लागू होगी तो वैष्णव नहीं बने हैं अभी, तो अगर कोई निम्न कोई शुद्ध स्तर पे है तो प्रॉपर यज्ञ के विधि विधान के अनुसार उसको लेने की परमिशन है, वैदिक प्रणाली के अंतर्गत वो है। अगर वो धीरे वैष्णव बनेगा तो स्वाभाविक उसको सब छोड़ देगा यदि वो शुद्ध वैष्णव, लेकिन जब तक नहीं बनेगा तब तक ही विल एडवांस। लेकिन कोई किसी भी वर्ण का है वो अपने वर्ण में रहकर यदि भगवान की सेवा करता है तो वो भगवत धाम जाएगा, इसलिए वर्ण चेंज करने की जरूरत नहीं। क्षत्रिय रहकर के क्षत्रिय का कार्य करते, जैसे अर्जुन अंत तक क्षत्रिय का कार्य किए और भगवत धाम गए। तो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करना पड़ेगा ही, ये जो जो वैष्णव विचार है वर्णाश्रम का जो भगवदगीता भगवान रखे हैं कि स्वकर्मणात्म अध्यक्ष, अपने अपने कर्म से आप भगवान की सेवा कर करके आप भगवत धाम जा सकते हैं, रेजुअल प्रोसेस में आने की जरूरत नहीं है आपको, धीरे धीरे करके आपको भगवान, आप अपनी स्थिति में रह करके ही भगवान की सेवा करने से आप भगवत धाम जा सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट प्रोसेस। हरे कृष्ण, ग्रंथराश्रम भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम।